السلام علیکم، یہ پارٹ 8 ہے ناول کال بیل، حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212131225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بیٹھ کر کھڑکی سے باہر تاریک فضاؤں میں گھوروں اور سوچوں کے بھور میں دولتا پھروں، سو کسی نہ کسی طرح وہ پڑتا ہی چلا گیا۔ اب ڈبے میں سکون چھایا ہوا تھا، بچے والی فیملی بھی شاید سو چکی تھی یا اونگ رہی تھی۔ سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک لگا ڈبے میں قیامت آ گئی ہو۔ طیب اتنی ہی زور سے چیخا تھا کہ میں ہی نہیں وہ سب بھی بوکھلا کر اڑ گئے۔ کیا بات ہے طیب، طیب؟ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا، وہ آنکھیں بند کی چیخ رہا تھا۔ وہ ضیا، کسی نے ابھی ابھی دادا ابو کو قتل کر دیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ دوسری جانب کا مرد اور لڑکا بھی اٹھ کر ہمارے قریب آ چکے تھے اور اس ہنگامے کی وجہ جاننا چاہتے تھے کہ طیب کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ عورتیں سر اچکائے ادھر ہی دیکھ رہی تھیں، بچہ بھی اٹھ چکا تھا اور خوف زدہ تھا۔ پاگل ہو تم، خواب دیکھا ہے تم؟ میں نے ان سب کے چہروں پر حیرانی دیکھ کر کہا۔ نہیں، یہ خواب نہیں تھا، طیب نے اپنے لہجے میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا۔ پھر ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایسی باتیں ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جھنپ گیا، پھر کھسیا کر بولا، ہاں شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ شاید نہیں، حقیقتاً تم خواب دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں ٹرین میں ہو اور سو رہے تھے جبکہ دادا دہلی میں ہیں، میں نے طیب کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر پلٹا، آئی ایم سوری۔ میں نے ان لوگوں سے معذرت کی، وہ لوگ پلٹ گئے مگر طیب کے چہرے پر وحشت اور خوف چھا گیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی اس نے سرگوشی کی، ضیا مجھے ڈر لگ رہا ہے، دادا ابو تمہیں بلا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے جلدی پہنچو ورنہ کبھی گھر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میں اڑنا نہیں جانتا، میں نے جھنجھلا کر جواب دیا، جب ٹرین پہنچائے گی تبھی پہنچوں گا۔ او ضیا، میں نے خواب میں ان کے قریب اسی بھیڑیا نما انسان کو دیکھا تھا۔ وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دادا ابو کو دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے گدھ مرتے ہوئے آدمی کے مر جانے کا انتظار کرتا ہے۔ تم خواب دیکھ رہے تھے، میں نے جواب دیا۔ ہاں خدا کرے یہ خواب ہی ہو، وہ بڑبڑایا مگر اس کا خوف کم نہیں ہوا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3:20 ہوئے تھے، اب سفر کم رہ گیا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دور نظر آتی ہوئی روشنیوں کو دیکھنے لگا جو جگنوں کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ دہلی آنے والا ہے، طیب جلدی سے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ برابر والی فیملی بھی اب اترنے کی تیاری کر رہی تھی اور پھر حیرت انگیز طور پر سفر بخیر و عافیت ختم ہو گیا۔ ہم دہلی پہنچے تو وہاں اسٹیشن کی رونق نے بڑی دھارس بندھائی، وہاں سے ہمیں گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ دروازے پر ٹیکسی رکی تو میرے اندر عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ گھر کے اندر بڑی روشنی تھی، صحن کی روشنی دیواروں کو پھان کر سڑک تک پہنچ رہی تھی۔ تمام کمروں کی ساری کھڑکیاں روشن تھیں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اماں سونے سے پہلے تمام بتیاں بجھا کر سوتی تھی، پورے گھر میں کہیں کوئی ایک بجلی جلتی رہتی تھی، مگر اس وقت تو یوں لگ رہا تھا جیسے پورا گھر جاگا ہوا ہو۔ طیب ٹیکسی والے کو کرایہ دینے لگا اور میں لپک کر دروازے پر پہنچ گیا۔ मैंने दरवाजा खटखटाया। ये दस्तक काफी तेज थी। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुल गया। सामने असमत आपा खड़ी थी। इनके चेहरे पर परेशानी थी। तुम जल्दी आओ, वो एकदम पलट गईं। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ इस तरफ बढ़ा जहां मैंने अम्मा, दादी और घर के दूसरे अफराद को देखा था। वो सब दादा के कमरे में जमा थे। क्या हुआ अम्मा? मैंने अंदर दाखिल होते हुए रोती हुई अम्मा से पूछा और लपक कर दादा के करीब पहुंच गया, जिनका सफेद चेहरा मुझे दहला गया। पहली निगाह में मुझे लगा जैसे वो हम सब को छोड़कर जा चुके हैं, मगर मैंने इनकी नब्ज देखी। फिर मुझे एहसास हुआ कि इनका सांस बहुत आहिस्ता चल रहा है, मगर वो जिंदा थे। डॉक्टर को बुलाया है? मैंने पलटकर असमत आपा से पूछा। कोने में दादी बैठी रो रही थीं। मैं इनके करीब चला गया। दादी अम्मा वो ठीक हैं, मैंने धीरे से तसल्ली दी। असमत आपा ने इस बात में सर हिला दिया था। इतनी देर में तैयब भी अंदर आ चुका था। वो भी ये सब देखकर पहले वही समझा जो मैं समझा था, मगर मैंने फौरन ही इसे तसल्ली दी। इशारे से बताया कि दादा ठीक हैं। मैं डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकता था। मुन्ने दादा गाड़ी ले आए थे। मैं और तैयब दादा को उठाकर गाड़ी तक ले गए। मैं इन्हें अस्पताल ले जाना चाहता था एंड इसी वक्त फैमिली डॉक्टर की गाड़ी आकर रुकी। इसने दादा को गाड़ी ही में चेक किया। मैंने इसे बताया कि मैं इन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। इसने सर हिलाया और बोला, ठीक है चलें, मैं भी साथ चल रहा हूँ। हम गाड़ी में बैठ गए। डॉक्टर अपनी गाड़ी में हमारे पीछे रवाना हो गया। दादा को बेहद कमजोरी थी। डॉक्टर हैरान थे कि वो तनफ्फुस को कैसे बरकरार रखे हुए हैं। इनकी उम्र, हालत और बीमारी ऐसी थी कि जिसमें अक्सर हौसला बैठ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक इनके फेफड़े जख्मी थे, जिगर बढ़ चुका था, खून में सुर्ख खलियों की तादाद कम हो चुकी थी, जहन काम नहीं कर रहा था, बिनाई बहुत कम हो चुकी थी, मगर वो जिंदा थे। दिन हमने अस्पताल में गुजारा। मैंने तैयब को रात गए घर भेजा तो के औरतों को तसल्ली दे। इन्हें ड्रिप लगी हुई थी। वो कभी कभी चौंक कर आंखें खोलते और खलाओं में तकते जैसे इनके सामने कोई मंजर ना हो। मैंने बहुत चाहा कि इन्हें अपनी जाने मुतवज्जह करूं। इन्हें आवाजें दी, बताया कि मैं आ गया हूं, मगर लगा जैसे इन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अस्पताल का MLO बार बार आकर देखता रहा। इसने एक सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी थी, वो भी बार बार चेक करता। मुझे इसने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं सब्र करूं। वो इस हालत में जिंदगी की हद पार कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि एक बार दादा होश में आ जाएं, मुझे बता दें कि वो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, मुझे बताएं कि शाली बाबा इन्हें मिले तो इन्होंने क्या कहा था। आप कहेंगे कि ये मेरी खुद गर्जी थी। हाँ यकीनन थी, हर आदमी इतना ही खुद गर्ज होता है। रिश्ते अपनी हैसियत खो देते हैं। अजनबियत की दीवार आदमी के जज्बों को सुला देती है। अभी दादा तो अपनी उम्र को पहुंच चुके थे। आदमी का जवान बेटा भी दम तोड़ रहा हो तो इसके वजूद में आखिरी लम्हात बर्फ की तरह पिघल कर इसमें ठंडक को मुंजमित कर देते हैं। वो साख थे। इनका हल्का सा तनफ्फुस मुझे बेचैन किए हुए था। मैं पूरा सिगरेट का पैकेट फूंक चुका था। ये दिन मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि इससे कब्ल में इनके साथ अस्पताल में गुजार चुका था। वही सन्नाटा, वही बेचैनी और वही कुछ अनहोनी होने का धड़का। अस्पताल में धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगा। आवाजें मादूम हो गईं। मेरा दम हलक में आ गया। पहले भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही। ये इसरार था और इसे होना ही था। मैं इसका मुंतजर था, मगर बाहर से आने वाली आहट ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो सन्नाटा, वो अजीब सी घुटन अमेज फिजा, वो धड़का सब यूं खत्म हो गया जिसे हवा में तहलील हो गया हो। बाहर से आते हुए कदमों की चाप मेरे करीब आ रही थी, फिर मुझे नर्स की आवाज सुनाई दी, इनका पोता इनके पास है। कौन? ये मर्दाना और भारी आवाज थी, पता नहीं, नाम नहीं जानती। फिर दस्तक सुनाई दी, दरवाजा भिड़ा हुआ था, बंद नहीं था। आइए, मैंने सिगरेट फर्श पर फेंक कर जूते से रगड़ते हुए कहा। फिर मैं हैरान रह गया, मेरे सामने नर्स थी और उसके पीछे शाली बाबा। शाली बाबा आप? मैं लपक कर आगे बढ़ा, वो धीरे से मुस्कुराए, फिर पलट कर नर्स को देखा। नर्स चली गई, मैंने कुर्सी घसीट कर दादा के बेड के करीब कर ली। मैं आपसे मिलने को सख्त बेचैन था और फिर भी फजूल खराफात में पड़े रहे, इनके लहजे में नाराजगी थी। कुछ अजीब सा चक्कर चल पड़ा था, मैं खजल हो गया। सब बकवास है, वो औरत बहुत मक्कार है। मुझे अफसोस ये था कि तुम एक छिचोरी औरत के तमाशों में गुम होकर रह गए हो। मैं असल हकीकत जानना चाहता था शाली बाबा, क्या एक शोबदेबाज औरत तुम्हें हकीकत से रोशनास करा सकती है? उन्होंने हंकारा भर कर कहा, वो बच्चों से आंख मिचोली का खेल खेल रही है। इतना कहकर उन्होंने दादा के सीने पर दायां हाथ रख दिया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। मैं साग बैठा दादा को देखता रहा। मैंने महसूस किया कि इनका तनफ्फुस धीरे धीरे तेज हो रहा है। इनके पीले चेहरे पर हल्का सा गुलाबीपन फैल गया। 10 मिनट 10 सदियों की तरह सीने पर भारी धमक पैदा करते हुए गुजर गया। 10 मिनट बाद शाली बाबा ने हाथ उठा लिया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराए। हिंदुस्तान जादूगरों की सरजमीन है जिया बेटा, इसरार तो पूरी दुनिया में है बाबा, मैंने धीरे से कहा। हाँ, कुछ तो खुदा की कुदरत है, मगर अक्सर इंसान पस्ती में गिर कर शोबेबाजी शुरू कर देता है। जरा सा इल्म हासिल कर ले तो कम जर्फी इसे हजम नहीं करने देती और वो अच्छे हथकंडों पर उतर आता है। तुम्हें पता है, जब इंसान बुलंदियां तय करता है तो पस्ती के फासले इसमें खौफ भर देते हैं और ये खौफ बुलंदी के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। मगर ऐसा सिर्फ तब ही होता है जब इस इंसान को अपने बुलंदी पर पहुंचने का गुरूर हो जाए। जो लोग बेखौफ खतर बेगर्ज बुलंदियां तय करते हैं, वो निगाह पस्ती पर नहीं डालते, वो अंजाम से बेपरवाह होकर आगे बढ़ते हैं। तब इनके अंदर हौसले ही हौसले होते हैं। खौफ जगह नहीं बना पाता, दुनिया से मुख्तलिफ बन जाने का खप्त, दूसरों पर दस्तक हासिल करने का घमंड, इल्म हासिल कर लेने का गुरूर, इसमें हर सुहवस के खजाने भर देता है। तब वो नहीं सोचते कि बुलंदियां दो तरह की होती हैं, एक वो जो पस्तियों का खौफ बन जाती हैं और दूसरी वो जो तमाम आलिम को मंजर बनाकर इनके सामने पेश कर देती हैं, हौसले जगमगा देते हैं जबकि खौफ मुरझा देता है। वो पता नहीं क्या कह रहे थे और क्यों कह रहे थे, बस बोल रहे थे और इनकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे इन्हें किसी पर गुस्सा है, बेपनाह गुस्सा। अचानक दादा धीरे से कड़हाए, मैं और शाली बाबा चौंक कर इनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। एन इसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि बाबा से इस पत्थर और बुरका पोश औरत के मुतालिक इस्तफसार करूं, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे जहन से ये बात निकल गई क्योंकि दादा आंखें खोले मुझे देख रहे थे, इनकी आंखों में कोई तासुर ना था। दादा कैसे हैं आप? मैं इन पर झुक गया। शाली बाबा ने दादा की आंखों में देखा, پہ اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ چند ہی ثانیے بعد دادا کی آنکھوں میں پہچان پیدا ہو گئی، ان کے لب ہلے اور وہ ضیا، ضیا، جی دادا، میں ہوں ضیا، تم نے اتنی دیر لگا دی۔ ان کی آنکھیں نم ناک ہو گئیں۔ دادا میں آنا چاہتا تھا مگر اب آ گیا ہے یہ، شالی بابا نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے احساس ہوا کہ شالی بابا مجھے کچھ بتانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا۔ دادا نے چونک کر شالی بابا کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا ضیا کو کچھ نہیں ہوگا، دادا کی آواز بھر گئی، ان کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، آ گیا ہے یہ، اسے کچھ نہیں ہوا، سب شعبدے بازی ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شالی بابا نے پہلے دھیرے اور نرمی سے کہا، میں آخری جملہ کہتے کہتے ان کی آنکھوں کی سرخی پھر بڑھ گئی۔ میں نے دادا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے سے سہلایا، میں بالکل ٹھیک ہوں دادا، آپ فکر نہ کریں، اب تم بالکل ٹھیک ہو، سو جاؤ، سو جاؤ، تمہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے، تمہارے دادا تمہارے لیے فکر مند تھے، وہ انہیں بھی پریشان کر رہی تھی، شالی بابا نے باہر آ کر کہا اور دادا کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کون ہے شالی بابا، وہ ہمیں پریشان کیوں کر رہی ہے؟ تم نے ضد کیوں باندھ لی ہے؟ تم ہر ایک سے ٹکر نہیں لے سکتے، مگر وہ سب کو پریشان کر رہی ہے، میں نے غصے سے کہا۔ میری آنکھوں میں رابرٹ کا خوفناک روپ اور کانوں میں جینو کی سسکیاں گونجنے لگی۔ ان لوگوں کا عمل درست تھا کیا؟ شالی بابا نے نرمی سے پوچھا۔ کن لوگوں کا؟ رابرٹ وغیرہ کا؟ معاف کرنا بیٹا، میں نے عطا سے کہا تھا کیسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن مبشر کا کیا قصور تھا؟ تایا نے کیا کیا تھا؟ منشی کی بیٹیوں اور تحسین خالہ نے کب نقصان پہنچایا ہے؟ اور پھر بڑی بوا، ضیا تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، جب تمہیں پتا چلے گا کہ اصل بات کیا ہے تو۔ وہ ادھوری بات چھوڑ کے رک گئے۔ میں نے اپنے اندر بے چینی محسوس کی۔ کیا بات ہے بابا؟ بیٹا تم نے معصومیت میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کیسی غلطی؟ وہ زنجیر، وہ تمہارے پیچھے پڑ چکی ہے ضیا، اور تم ایک بڑے عذاب میں گھر گئے ہو۔ وہ کون ہے؟ میں کروں گا کچھ ورنہ سب ختم ہو جائے گا، وہ بڑبڑائے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ عالم غنودگی میں چلے گئے ہوں۔ ان کی آواز گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، بابا، آپ میرا خوف بڑھا رہے ہیں، مجھے حوصلے کی ضرورت ہے، اور سنیں، اچانک مجھے اس پتھر کا خیال آیا۔ بابا کیا ٹرین کے سفر میں آپ نے مجھے یہ بھیجا تھا؟ اتنا کہہ کر میں نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں وہ پتھر رکھا تھا، مگر میرا ہاتھ خالی واپس آ گیا۔ کیا؟ وہ ایک دم ہراسا ہو گئے۔ وہ پتھر تھا ویسا ہی جیسا۔ میں نے اپنی ساری جیبیں دیکھ ڈالی اور ساتھ ہی میں نے کہا، شالی بابا کے چہرے پر پڑی، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، وہ میری پشت پر دادا کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہو چکا تھا، یوں لگا جیسے انہوں نے میرے پیچھے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیا ہے۔ میں جھٹکے سے مڑا، اور پھر سے پہلے کہ میں کچھ کرتا میں سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، میرا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبنے لگا اور میں جیسے کسی گہری سرنگ میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے میں نے بے پناہ شور کی آوازیں سنی۔ آخری آواز شالی بابا کی تھی جو دادا کو پکار رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر اور ہاتھ پاؤں چلا کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ آنکھیں کھلتے ہی جیسے روشنی کا جھمکا ہوا، سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جسے میں نے اور طیب نے پہلی بار ایسیا والی کوٹھی میں دیکھا تھا۔ پھر لڑکی نے ایک دم مجھے تھامنا چاہا، मगर मैंने देखा कि शाली बाबा मेरे और इसके दरमियान आ गए और फिर मैं अंधेरों में डूब गया। होश आया तो घर पर था। जोरा आपा और बीजान मेरे करीब बैठी थी। घर का कोई दूसरा फर्द कमरे में नजर नहीं आ रहा था, मगर बाहर बहुत से लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। मखसूस सल हिजा था, जैसे सब मिलकर कुछ पढ़ रहे हों। मैंने आंखें मूंद कर बाहर की आवाजों पर गौर किया तो मेरे बदन में सनसनी सी फैल गई। ये एहसास हुआ कि बाहर काफी लोग हैं और गालबन बा आवाज बुलंद कुरान की तिलावत हो रही है। घबरा कर आंखें खोल दी। बीजान की निगाह अब मुझ पर पड़ी थी। वो मुझ पर झुक गई। कैसा है चांद? बीजान, ये कैसी आवाजें हैं? कौन लोग आए हुए हैं? जिया, दादा हमसे बिछड़ गए। जोरा आपा ने एकदम ही अपना सर मेरे सीने पर रख कर रोते हुए कहा। एक गहरा सन्नाटा मैंने अपने अंदर फैलता महसूस किया। अजीब सा खालीपन था, जैसे सिर्फ दादा नहीं सारी दुनिया मर गई हो। कोई आवाज, कोई हरकत, कोई इर्ताज जिंदा ना हो, कोई ख्याल, कोई सोच, कोई तहरीक ना रही हो। वीरानी, सन्नाटा और खालीपन बरसा चला जा रहा हो, फिजाएं तक साख्त हो गई हो। ऐसा नहीं था कि दादा की उम्र अभी मरने वाली नहीं थी, या ये मौत बिल्कुल ही गैर मुतक्का थी, बल्कि ऐसा था कि मैं कुछ वक्त चाहता था, थोड़ा सा वक्त, मगर वो मुझे नहीं मिल सका। मैं खुद भी चल में साख्त रहा। फिर जहन में शोर सा बुलंद हुआ, सारी आवाजें जिंदा हो गईं। जोरा आपा रो रही थी, बाहर से कुरान खाने की आवाजें आ रही थीं, कदमों की चाप, लोगों की सरगोशियां। फिर एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मुझे क्या हुआ था? ये ख्याल अल्फाज की सूरत में बे इरादा ही मेरे होंठों पर आ गया। पता नहीं जिया, शाली बाबा तुम्हें यहाँ लाए थे और सुनो, उन्होंने तुम्हें यहाँ से उठने को मना किया है। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि तुम होश में आओ भी तो तुम्हें इस पलंग से कदम नीचे ना उतारने दूं। वो रात तक लौट आएंगे। तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से कहीं नहीं जाना। मगर क्यों? मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उलझ गया। बेटा, इनका कहाँ मानना जरूरी है? वो बहुत परेशानी में सिर्फ इतना कहकर गए हैं। बीजान ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो मेरी राजदार थी। मैं हालात की सारी संगीनी इनसे डिस्कस कर चुका था, खास तौर पर शाली बाबा के बारे में इनसे पहले ही बात हो चुकी थी। ऐसा कहते हुए इनकी आंखों में कोई ऐसी बात भी थी जिसे मैं खौफ का नाम तो नहीं दे सकता, मगर फिर भी वो कैफियत खौफ से मिलती जुलती जरूर थी। कहीं कहीं इत्मीनान का शायबा भी होता था, मगर मैं शायद ज़हनी हालत पर काबू नहीं पा सका था, इसलिए बात वाज़े तौर पर महसूस नहीं कर पा रहा था। बस इतना एहसास हो चुका था कि कोई गड़बड़ नहीं है। शायद बीजान को सब कुछ ठीक हो जाने का एहसास भी हो। दादा के बारे में बहरहाल मुझे तश्वीश थी। पूछने पर पता चला कि शाली बाबा मुझे और दादा की मैयत को लेकर घर पहुंचे थे, जबकि तैयब और मुन्ने दादा इसी वक्त अस्पताल के लिए घर से निकल चुके थे। घर में कोई मर्द नहीं था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने मुझे अंदर पहुंचाया और दादा की मैयत को बड़े चबूतरे पर रखवा दिया। घर में कोहराम मचा, मगर इस कोहराम में दादी की दबी दबी सिसकियां किसी को भी सुनाई ना दी। वो खामोश होकर रह गईं। देरीना साथी और रफीक को बेहसो हरकत और मुर्दा देखना कैसे दिल गुर्दे का काम होता है, मुझे इसका अंदाजा था, मगर शायद फिर भी मैं कम महसूस कर रहा था। इनके चेहरे की जर्दी तो मुझे अस्पताल में भी याद आ रही थी। अब जाने क्या हाल होगा। मैं इनके पास जाना, इन्हें तसल्ली देना चाहता था, मगर साली बाबा के अजीब और गरीब हुक्म ने मुझे बेबस कर दिया था। मैं भी जान से तफसील पूछना चाहता था, मगर जोरा आपा मेरी पट्टी से लगी बैठी थी। इन्होंने मेरे लिए ऑरेंज जूस भी वहीं बैठे बैठे निकाला था और मोहब्बत से लिबरीज निगाहें मुझ पर गाड़े अब मुझे जूस पी लेने की हिदायत कर रही थी। आप कब आए जोरा आपा? अभी कुछ ही देर पहले पहुँचे हैं। रात ही मुन्ने दादा ने फोन कर दिया था, इत्तफाक से रात वाली गाड़ी भी मिल गई। ताहिर भी आए हैं और नासिर चचा भी। तैयब कहाँ है? वो बाहर है, दादा को अभी दफनाया नहीं गया है, शाली बाबा ने रोकने को कहा था, वो आएंगे तो इन्हें दफनाया जाएगा। ये सुनकर मुझे इतनी तसल्ली जरूर हो गई कि मैं दादा को कांधा दे सकूंगा। यकीनन शाली बाबा मुझे इस पाबंदी से निजात दे देंगे। फिर अचानक ही मुझे वो आखिरी सीन याद आ गया जिसे मेरे अंधेरे में डूबते जहन ने महफूज कर लिया था। हाँ, वो वही थी, वही हसीन और जमील और बला की साहरा लड़की जिसे हम पहली निगाह में ऐसिया की बेटी समझ बैठे थे। वो मेरी पुश्त पर थी और मेरे सर पर किसी ने जोरदार वार किया था। ये ख्याल आते ही मैंने अपने सर का पिछला हिस्सा सहलाया, वहाँ गोमड़ पड़ा हुआ था। कैस लड़की ने मुझ पर हमला किया था? तेजी से सवाल गूंजा, मगर फिर ये भी याद आ गया कि शाली बाबा ने जब दहशत ज़दा निगाहों से मेरे पीछे देखा था तब वो दादा को पुकार रहे थे। मगर वो इन्हें क्यों पुकार रहे थे? क्योंकि दादा तो मेरे इल्म के मुताबिक कमरे में बेड पर नीम बेहोशी की हालत में थे। फिर जब हमला आवर ने मुझे तारे दिखा दिए थे तब मैंने पलट कर देखा और उसे अपने सामने पाया था। इसने थामने की कोशिश की तो शाली बाबा दरमियान में आ गए थे। क्या हुआ था वो सब कुछ? वो थी तो अब कहाँ है? वो थी कौन? शाली बाबा ने दादा को भला क्यों पुकारा था? वो कब किसी की मदद करने के काबिल थे? मेरा सर चकराने लगा। मैंने दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कनपट्टियां दबाई। बीजान मुझे बहुत गौर से देख रही थी, बोल उठी, जिया, चंदा, तुम कुछ न सोचो, सब खैरियत है। दादा को तो जाना ही था, अब इतना बूढ़ा आदमी जवान बच्चों को कांधा देकर कब मजबूत रहता है कि ज्यादा जी ले। वो तो फिर हिम्मत वाले थे। मेरी तहसीन मुझे निचोड़ गई। इनके तो जवां कड़ियल बैठे थे जिन्हें कांधा भी दिया था इन्होंने। गम आधा कर देता है आदमी को, हौसले तो जवान बच्चों के वजूद से ही जवान रहते हैं। बेटा, जवान औलाद मिट्टी में मिला कर भला हौसले कब समेटे रह सकता है आदमी? अपने आप को संभालो, अब घर में तुम ही रह गए, सुज्जा और रजा तो यहाँ है ही नहीं। तुम्हारी अम्मा, मुन्नी, दादी और हम तुम्हारे बल पर ही जीते रह सकते हैं। उन्होंने बूढ़ी और धुंधली आंखों में आए गदले पानी को दुपट्टे के पल्लू में जब्त करते हुए कहा। इनके हम कहने पर मुझे पहले फरहत का फिर खाला जी का ख्याल आ गया। बी जान, खाला जान और फरहत कैसी हैं? हाँ, इनकी बुझी और धुंधली आंखों में लम्हा भर को कहीं सितारा सा चमका। फुर्सत, फरहत, हाँ वो गम से तो निढाल है मगर अब से पहले तो बहुत सहमी हुई थी, अब भी हरासा है। मैं इसे बता तो आऊं कि तुम होश में आ गए हो, तीन चार मरतबा चक्कर लगा चुकी है। बी जान ये कहकर उठ गई। जोरा आपा मोहब्बत पाश निगाहों से मुझे तके जा रही थी मगर इनकी आंखों में नमी अब भी थी। ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा दोम का बकिया हिस्सा पार्ट 9 में समाप्त फरमाएं।